अब अगली सूरत है नहल। नहल क्या है? शहद की मक्खी। मक्खियां दो तरह की होती हैं, एक है जुबाब और एक है नहल। बेहतर है कि ये सारी बातें उस आयत पे करूं जिसको हमने इस सूरत के लिए चूज किया है। नेमतों की सूरत है। आपको इस सूरत को पढ़ते वक्त जो फीलिंग आनी है मैं आपको अभी सी बता देती हूँ। हर साल बताती हूँ, जो लोग पहले सुनते हैं उनको पता होगा मैं अभी क्या बोलने लगी हूँ, कि आप ट्रेन में बैठे हुए और बड़ी बड़ी विंडोज हैं और उसके बाहर मंजर बदल रहे हैं। कभी गए हैं बाय द वे ट्रेन पे? कितने मंजर, कभी सब्ज है, घास है तो उसके ऊपर सफेद बकरियां चर रही हैं और कहीं पानी के झरने और कहीं शहर आते हैं, और आपको ऐसे लगेगा इस सूरत को पढ़ते हुए कि आप नेमतों की ट्रेन में बैठे हुए हैं। गोया कि ये एक राउंड ट्रिप अल्लाह ताला करवा रहे हैं आपको मुझे, इस दुनिया में मैंने तुम्हें क्या कुछ देकर रखा है, और पैगाम यही है कि नेमतों पे गौर कर लो। खालिक को पहचानना है तो उसकी मखलूक को देख लो, उसने कितना प्यारा ये सब कुछ बना दिया, तो तुम इस पे गौर व फिक्र करोगे, तुम्हारे दिल में भी उसकी बड़ाई आएगी। आइए शुरू करते हैं। शुरू का हिस्सा हम जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ तदब्बुर है। आपने हर आयत को सुनते हुए बिल्कुल तवज्जो फोकस रखनी है। क्यों? कि इसमें बीच में मैं बोलूंगी तो आपका वो मंजर देखना और वो टेम्पो टूट जाएगा जो कि नहीं टूटना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अतामरुल्लाहि फला तस्ताजिलू। आ गया अल्लाह का फैसला, अब इसके लिए जल्दी ना मचाओ। क्यामत की बात। पाक है वो और बाला बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग कर रहे हैं। वो इस रूह को अपने जिस बंदे पर चाहता है अपने हुक्म से मलाइका के जरिए नाजिल फरमा देता है। इस हिदायत के साथ के लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, बस तुम मुझी से डरो। ये है पैगाम। मखलूक को देखते हुए खालिक को पहचानो। कायनात के हुसन को देखो, बनाने वाला कितना प्यारा होगा। इसने आसमान और जमीन को बरहक पैदा किया, वो बहुत बाला बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। इसने इंसान को एक जरा सी बूंद से पैदा किया। अपनी गोद में खेलते बच्चे को देखिए, कहाँ से शुरू हुआ और कितनी प्यारी शक्ल में हमारे तक पहुंचा, और देखते ही देखते सरीहन वो एक झगड़ालू हस्ती बन गया। झगड़े बच्चों के कहाँ से शुरू होते हैं? पहले तो दुनिया में आने का ही झगड़ा है, रोता हुआ आता है। फिर आप देखिए, माँ दूध पिला रही है, बच्चा रो रहा है। माँ नहला रही है, बच्चा रो रहा है। माँ नाखून काट रही है, बच्चा रो रहा है। यानी झगड़े लेकर दुनिया में आता है इंसान। इसने जानवर पैदा किए जिसमें तुम्हारे लिए पोशाक भी और खुराक भी। घर में कोई है लेदर की चीज? लेदर जैकेट्स तो होंगी ना, आप जाके गौर कीजिएगा। जानवरों की खाल अल्लाह ने आपके मेरे पहनने के लिए बना दी, और तरह तरह के दूसरे फायदे भी हैं। यहां इस सूरत के साथ साथ जरा अपने थीम को भी नजर में रखिए। नफा बख्श बनना है तो मकसद पे नजर रखिए। ये जानवर देखिए खुद खट खट जाते हैं, लेकिन आपको मुझे क्या कुछ खिला भी जाते हैं और क्या कुछ पहना भी जाते हैं। इनमें तुम्हारे लिए जमाल है जबकि सुबह तुम इन्हें चरने के लिए भेजते हो और जबकि शाम इन्हें वापस लाते हो। कभी आपने बकरियां चराई हैं? हर नबी ने बकरियां चराई हैं, भला क्यों? एक तो नेचर से एक्सपोज किया जाता है, दूसरी ये कि बकरी बड़ी शरीर जानवर होती है, तो जिन्होंने कौमों की तरबियत करनी होती है उनको पहले जानवरों की तरबियत करवाने में माइल किया जाता है। और कभी मौका हो तो शाम को निकल जाए बाहर घर से। किस किस को ऑब्जर्व करने का शौक है नेचर को? कभी बाहर निकले, खुले मैदानों में जाए, ईद पे कोई ट्रिप बना ले, घूमे फिरे, अपने बच्चों को पत्ते फूल दिखाइए, अल्लाह ने क्या कुछ बनाया। हम नेचर से कुछ ज्यादा प्यार नहीं करते, सच्चे के झूठ? अल्लाह ताला हमें इसकी मोहब्बत दे। जबकि तुम सुबह इन्हें चरने के लिए भेजते हो और जबकि शाम इन्हें वापस लाते हो, वो तुम्हारे लिए बहुत ढो ढोकर ऐसे ऐसे मुकामात तक ले जाते हैं जहां तुम सख्त जानफिशानी के बगैर नहीं पहुंच सकते। आज तो गाड़ियां हैं, पहले घोड़े और ऊंट और खच्चर थे, कैसे इंसान को मुश्किल जगहों पे पहुंचाते थे। हकीकत यह है कि तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और मेहरबान है। इसने घोड़े और खच्चर और गधे पैदा किए ताकि तुम इन पर सवार हो और वो तुम्हारी जिंदगी की रौनक बने, और बहुत सी चीजें तुम्हारे फायदे के लिए पैदा करता है। क्या है आज? गाड़ियां और मोटरसाइकिलें और जहाज, पहले तो पता भी नहीं था लोगों का। इसीलिए कहा जिनका तुम्हें इल्म तक नहीं है, और अल्लाह ही के जिम्मे है सीधा रास्ता बताना जबकि रास्ते टेढ़े भी मौजूद हैं। अगर वो चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता। ये क्या बातें हो रही हैं? ये बातें हो रही हैं कि अल्लाह की नेमतों को तो गौर से देखो। जरा सोचिए, सवारी होती कोई ना, कुर्सी होती कोई ना, बेड होता ही कोई ना, चलते ही रहते, चलते ही, या खड़े हैं या चल रहे हैं, क्या बनता? इन चीजों पे भी गौर करने से अल्लाह पे प्यार आता है कि उसने हमारी आसाइश के लिए क्या कुछ किया। پھر ایک اور نعمت، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. کھایا کبھی یہ پھل؟ آج کھجور کھاتے ہوئے شاید کو یاد کریں، نوٹ کر لیں انشاءاللہ. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. بار بار دیکھیے عقل کی بات ہے، اللہ کو پہچاننے کے لیے عقل بھی کافی تھی. اور یہ جو بہت ساری رنگ برنگی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں بھی ضرور نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں. اے اللہ ہمیں سبق حاصل کرنے والا بنا دے. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ. سی فوڈ کس کو پسند ہے؟ اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو. یہ کیا پلس؟ یہ کس کو پسند ہے؟ آپ ڈرے نہیں، ہاتھ اٹھا لیں، مجھے پتا ہے آپ کو بہت پسند ہے. الحمدللہ. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. اب دیکھ رہے ہیں یہ کائنات ایک خاموش سہارے کے طور پر انسانوں کی خدمت کر رہی ہے. ہر چیز ایک کام میں لگی ہوئی ہے اور آپ کو مجھے اس سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ تم بھی نفع دو جب یہ چیزیں نفع دے رہی ہیں. پھر اگلی چیز جس پہ غور و فکر ہے وہ پہاڑ ہے. اس نے زمین میں پہاڑوں کی مہیں گاڑ دی تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کر دی اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ. سوچیے اگر راستے نہ ہوتے تو کیا ہوتا. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. ستاروں کے تین بڑے مقاصد ہیں، دو آج آ گئے ہمارے سبق میں، زینا سورت ہجر میں، اور یہاں دیکھیے راستے پانا اور سورت ملک میں رجوم للشیاطین. آپ دیکھیے کہ پہلے دور میں سورج اور چاند کو پوچھنے کا شرک تھا، چمکتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ خدا ہوں گے. آج کل سورج چونکہ ہمیں سامنے نظر آتا ہے، ہم نے اس کو بہت کچھ دیکھا، اور سورج کی کیا گردش ہے، چاند کی کیا، تو آج کے دور کا شرک سائنس کو پوچھنا ہے. ہر چیز کو سائنٹیفک لاز کے ساتھ پروف کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی ہستی کو پیچھے کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان چیزوں کو استعمال کرو اور خالق تک پہنچو. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور جو کچھ پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے. حقیقت یہ کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف اور چھپے سے بھی. پیچھے بھی آئی تھی آیت، نعمت اللہ، ایک نعمت بھی نہیں گن سکتے. گننا چاہیں گے آج جا کے؟ یہ اب آپ کو ری کنفرمیشن ہو رہی ہے. کل کم از کم نمبر تو بتا دیجئے کہ میں اتنی نعمتیں گن چکا ہوں. ایک دفعہ میرے ہسبینڈ تھے تو چھوٹے ینگ بچوں کے ساتھ وہ کوئی سیشن کر رہے تھے، تو انہوں نے اب بچوں کو یہی کہا. اب بچے جو تھے نا وہ دو چار گن گئے، چاکلیٹ جو سیل فون جو دل دماغ میں سوار ہے. کل وی ڈونٹ ریممبر اینی تھنگ، کچھ نہیں کچھ نہیں. پھر جب انہوں نے ان کے جسم سے شروع کرایا، پاؤں کی انگلیوں سے لے کے جسم کے ایک ایک آرگن کو، کہتے وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دیٹ کہ دیز آر بلیسنگس، ہم نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں کہ یہ بھی نعمتیں ہیں. تو واللہی آپ کو کل یا پرسوں انشاءاللہ ایک ایسا کردار دکھائیں گے کہ جس کو دیکھ کر واقعی نعمتوں کی قدر آتی ہے اور دعا نکلتی ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ نعمتوں کے زوال سے بچا. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں بلکہ خود مخلوق ہیں، مردہ ہیں نہ کہ زندہ. ان کو کچھ معلوم نہیں کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. ہے نا، نہ سمجھ لوگ مردوں کو بلاتے ہیں اور زندہ خدا کو چھوڑ دیتے ہیں. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. اور جب ان سے کوئی پوچھتا ہے، اب یہ سوال شاید آپ نے بھی کبھی سنا ہو، بڑی پیاری آیت ہے، اس کو دیکھیے گا. جب کوئی ان سے پوچھتا ہے تمہارے رب نے کیا چیز نازل کی ہے، آپ سے بھی یہاں جانے کے بعد لوگ پوچھیں گے کیا قرآن میں آتا ہے، एक किरदार है, क्या कहेगा? तो कहते हैं जी वो तो अगले वक्तों की पुरानी कहानी है, वही पिछले साल वाला दारे कुरान, हर साल वही तर्जमा पढ़ते हैं, पढ़ लिया हुआ है। जैसे एक बच्ची थी तो उसने पिछले साल दौरे कुरान किया था कहीं हमारे साथ, तो उसको किसी ने इस दफा दावत दी कि बेटा आपने पिछले साल किया था, इस साल है? कहती मैंने कर लिया हुआ है, यानी करके रखा हुआ है। खाने के लिए तो कोई नहीं ये सोचता कि खा लिया हुआ है, तो कुरान आपको हर साल एनर्जी देता है अल्लाह ताला के हुक्म से, मुझे तो बहुत मिलती है। मैं आज सुबह जब ये पारा रेडी कर रही थी, आपने देखा मैंने शायद आपको 25-30 आयतें लिखाई हैं शुरू में, ये 3-4 पर्चियों पे नंबर लिखे हैं, तो मैं सोच रही थी कि पिछले साल तो नहीं मैंने इस पे गौर किया, क्योंकि पिछले साल थीम फर्क था। कुएं में से पानी निकालते जाएंगे ना, एक वक्त आता है खत्म हो गया, रात भर बंद कर दीजिए, सुबह जाएंगे फिर पानी होगा, और जितनी गहराई में जाएंगे मीठा पानी होगा। ये कुरान का इल्म ये कभी खत्म नहीं होगा। अल्लाह ना करे जिंदगी का कोई एक साल ऐसा आए, एक दिन महीना ऐसा आए कि हम इस कुरान से दूर होकर दुनिया से जाएं। ये बातें वो इसलिए करते हैं कि क़यामत के रोज़ अपने बोझ भी पूरे उठाएं और साथ साथ कुछ इन लोगों के बोझ भी समेटें जिन्हें जहालत की बिना पर गुमराह कर रहे हैं। इसको भी नोट करें, बाज़ दफ़ा इंसान गैर शौरी तौर पर दूसरों को दीन से दूर कर देता है, और माशाल्लाह कुछ तो कुरान पढ़ने वाले कैसे दूर करते हैं। सिर्फ आपको रिलैक्स करने के लिए सुना रही हूँ। किसी शादी में मैं भी इनवाइटेड थी, दूसरे हमारे माशाल्लाह प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स भी थे, राउंड टेबल चल रहा था, अब नए लोग भी थे। जब मैं बैठी हूँ तो वैसे उनको लगता है बातें कुरान की करनी चाहिए। अब वो शुरू हो गए, उन्होंने कहा अच्छा सुना है आप कोर्स कर रही हैं। कहती जी कोर्स करते हैं, रोज टेस्ट होता है, असाइनमेंट करने पड़ते हैं, और इतनी मेरा तो कहना कि काटो तो बदन में लहू नहीं, मुझे लगे मेरा दिल घट जाएगा। मैं उनको घूरू, पर वो अपने जोश इबादत में और दीन में लगी हुई थी। आज पता चला कि लोग आपको क्यों नहीं अब शादियों पे बुलाते, आप लोगों को भगा रही हैं भाई, खबरदार आज के बाद आपने टेस्ट दिया। तो बाहर वालों को ये नहीं बताते कि टेस्ट होते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, मसले हमें बताएं, अच्छी बातें बाहर जाकर बताएं, ये पैगाम है इसका। बहरहाल अल्लाह नासमझी से भी बचाए, ये मोहब्बत में होता है। ये देखो कैसी सख्त जिम्मेदारी है जो अपने सर पर ले रहे हैं। इनसे पहले भी बहुत से लोग हक को नीचा दिखाने के लिए ऐसी ही मक्कारियां कर चुके, तो देख लो अल्लाह ने इनके मकर की इमारत जड़ से उखाड़ फेंकी और इसकी छत ऊपर से इनके सर पर आ रही, और ऐसे रुख से इन पर अजाब आया जिधर से इसके आने का इनको गुमान तक ना था। फिर क्यामत के रोज अल्लाह इन्हें जलील ख्वार करेगा। अल्लाह किसी से नहीं डरता क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है। और इनसे कहिए बताओ अब कहाँ है मेरे वो शरीक जिनके लिए तुम अहले हक से झगड़ा करते थे, जिन लोगों को दुनिया में इल्म हासिल था वो कहेंगे आज रुसवाई और बदबख्ती है काफिरों के लिए। हाँ इन्हीं काफिरों के लिए जो अपने नफ्स पर जुल्म करते हुए जब मलाइका के हाथों गिरफ्तार होते हैं यानी मौत के फरिश्ते, तो सरकशी छोड़कर फौरन हथियार डाल देते हैं और कहते हैं हम तो कोई कसूर नहीं कर रहे थे। मलाइका जवाब देते हैं कर कैसे नहीं रहे थे, अल्लाह तुम्हारे करतूतों से खूब वाकिफ है, अब जाओ जहन्नुम के दरवाजों में घुस जाओ, तो वहीं तुमको हमेशा रहना है, बस हकीकत है कि ये बहुत ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरों के लिए। ये आयतें अजाब कब्र की भी दलील है। इससे क्या पता चलता है कि जब दुनिया में दीन पर अमल करना किसी जगह मुश्किल हो तो उस बड़ी हिजरत यानी मौत से पहले इंसान उस जगह को छोड़ दे। जहां रहिए शौक से रहिए, अल्लाह के बंदे बन के रहिए, अल्लाह के हुक्मों को मान के रहिए। इसके बरक्स अब ऊपर बात चली थी ना कि पूछा जा रहा है क्या नासिल हुआ, तो बदबख्तों ने तो कह दिया असातीरुल अव्वलीन। अब आप जैसे प्यारे लोगों की बात है, क्या कहते हैं घर जाके दूसरों को, वकील लिल्लज़ीना तक़ू मा ज़ंज़ला रब्बुकुम क़ालू खैरा। दूसरी तरफ जब अल्लाह से डरने वाले लोगों से पूछा जाता है ये क्या चीज है जो तुम्हारे रब की तरफ से नाजिल हुई है, तो वो जवाब देते हैं बेहतरीन चीज उतरी है। यही जवाब देते हैं ना, आज का पारा बेहतरीन, आज की सूरत बेहतरीन। पहले मैं कहती थी अब मैंने अपनी इसलाह कर ली है, जो सूरत शुरू होती थी मैं कहती थी कुरान की सबसे खूबसूरत सूरत, जो पारा शुरू होता था मैं कहती थी आज का पारा सबसे अच्छा। एक जगह मैंने एक दो बार बोला तो पीछे से बोला कहती आप हर सूरत पे ये कहती। फिर मैंने जरा अपने आप को ठीक किया कि लोग सुनते हैं सारे सोते नहीं हैं। बहरहाल इसी तरह के नेकोकार लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो जरूर ही इनके हक में बेहतर है। बड़ा अच्छा घर है मुत्तकियों का, अल्लाह हमें भी दे दे, एक छोटा सा घर बना दे हमारा आखिरत में, जन्नत में। दायमी क्याम की जन्नतें जिनमें वो दाखिल होंगे, नीचे नहरें बह रही होंगी और सब कुछ वहां ऐन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। जरा सा सोचिए दुनिया में क्या आपका घर आपकी ऐन ख्वाहिश के मुताबिक है? अगर आज से 5 साल पहले बन गया था तो आज कोई नहीं रहा होगा, अब उसको रेनोवेशन की जरूरत है। सिर्फ एक घर ऐसा होगा मेरा आपका जो पूरे का पूरा मेरी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। अच्छा घर बना ले ख्वाहिश के मुताबिक तो घर वालों की सख्ती आ जाती है। बच्चे कहते हैं अम्मा आप सफाई ना किया करें, फिर आप कहती हैं पाँव भी सर पे रख के चलो। बेगम चीजें बिखरी रहने दें, आप हर टॉवल पे मेरे साथ लड़ती हैं, मैंने इधर ही फेंकना है। घर फैला हो ना घर वाले खुश रहते हैं और घर वाली परेशान, और घर साफ हुआ तो घर वाली खुश और घर वाले परेशान। और कई खवातीन तो माशाल्लाह घर को हॉस्टल बनाती हैं, खबरदार यूं रखो इधर बैठे जूते रख के ये करें। भाई वो घर में आए हैं, वो कोई हॉस्टल में थोड़ी आए हैं कि आप उनके ऊपर ऐसे कानून डालें। तो याद रखिए जो भी इस घर को हम बेहतर करेंगे फिर भी कम होगा, वहां इंशाल्लाह घर बड़े खूबसूरत होंगे। ये जजा देता है अल्लाह मुत्तकियों को, इन मुत्तकियों को जिनकी रूहें पाकीज़गी की हालत में जब मलाइका कब्ज करते हैं तो कहते हैं सलाम हो तुम पर, जाओ जन्नत में अपने आमाल के बदले। यहाँ हम सब अपनी जान कनी के हालत की दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी जब रूह निकले तो फरिश्ते हमें भी यही कहें सलामुन अलैकुम उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून। और सही रिवायत से मिलता है कैसे वक्तों में फरिश्ते खुशखबरियाँ देते हैं। अल्लाह ताला हमें ईमान वाली मौत दे, ऐसी मौत हो कि सुई के नाके में से जैसे कोई चीज़ निकलती है निकल जाए, आसानियों की मौत हो, जैसे खुशबू की शीशी खुली रहे और खुशबू उड़ जाए। अल्लाह हमारी रूह को ऐसे उड़ाना। अल्लाह इन्नी अला सकरातिल मौत, अल्लाह वो मौत की सख्तियों मौत की डुबकियों पे हमारी मदद फरमाना। ए नबी अब जो ये लोग इंतजार कर रहे हैं तो इसके सिवा और क्या बाकी रह गया है कि मलाइका ही आ पहुंचे या तेरे रब का फैसला सादर हो जाए। इस तरह की ढिटाई इनसे पहले बहुत सारे लोग कर चुके, फिर जो कुछ इनके साथ हुआ वो इन पर अल्लाह का जुल्म ना था बल्कि इनका अपना जुल्म था, और वही चीज़ इन पर मुसल्लत होकर रही जिसका वो मजाक उड़ाया करते थे। तो याद रखिए अल्लाह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह ताला लोगों को उनके आमाल के मुताबिक उनके दिल के मुताबिक ट्रीट करता है। ये मुशरिकीन कहते हैं अगर अल्लाह चाहता तो ना हम और ना हमारे बाप दादा इसके सिवा किसी और की इबादत करते और ना इसके हुक्म के बगैर किसी चीज़ को हराम ठहराते। देखिए फिर इल्ज़ाम अल्लाह पे ही डाल रहे हैं लोग, ऐसे ही बहाने इनसे पहले के लोग भी बनाते रहे हैं। तो क्या रसूलों पर साफ साफ बात पहुंचा देने के सिवा और भी कोई जिम्मेदारी है? हमने हर उम्मत में एक रसूल भेज दिया और इसके जरिए से सबको खबरदार कर दिया कि अल्लाह की बंदगी करो और तागूत की बंदगी से बचो। फमिनहुम मन हदल्लाह, इसके बाद इनमें से किसी को तो अल्लाह ने हिदायत बख्शी और किसी पर जलालत मुसल्लत हो गई। अल्लाह हमें हिदायत दे दे। फिर जरा जमीन में चल फिर कर देख लो झुटलाने वालों का क्या अंजाम हो चुका। ऐ नबी तुम चाहे इनकी हिदायत के लिए कितने ही हरीस हो मगर अल्लाह जिसको भटका देता है फिर इसे हिदायत नहीं दिया करता और इस तरह के लोगों की मदद नहीं करता। देखिए नालायक स्टूडेंट जो होता है ना, उस्ताद पूरे इखलास पूरी ख्वाहिश तमन्ना के बावजूद उसको फायदा नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने सोच लिया होता है कि हमने इससे फायदा नहीं लेना। विशफुल थिंकिंग जो होती है ना लोगों की, ऐसी जन्नत मिल जानी है कुछ नहीं होगा, उनको नबियों से भी फायदा नहीं हुआ। अल्लाह ताला कह रहे आप इनको छोड़ दीजिए। करते क्या है ये लोग, अल्लाह के नाम से कड़ी कड़ी कस्में खाकर कहते हैं कि अल्लाह किसी मरने वाले को फिर से जिंदा करके ना उठाएगा। उठाएगा क्यों नहीं, ये तो एक वादा है जिसे पूरा करना इसने अपने ऊपर वाजिब कर लिया, मगर अक्सर लोग जानते नहीं। और ऐसा होने के इसलिए भी जरूरी है कि अल्लाह इनके सामने इस हकीकत को खोल दे जिसके बारे में ये इख्तलाफ कर रहे हैं और मुनकरीन हक को मालूम हो जाए कि वो झूठे थे। रहा इसका इम्कान तो हमें किसी चीज को वजूद में लाने के लिए इससे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, किसे हुक्म दे हो जा और वो हो जाती है। अल्लाह हमारी दुआओं की कबूलियत पे भी कुन कहते। जो लोग जुल्म सहने के बाद अल्लाह की खातिर हिजरत कर गए, नोट कीजिए अल्लाह की खातिर हिजरत, इनको हम दुनिया ही में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो बहुत बड़ा है। अल्लाह का ये वादा पूरा हुआ सहाबा के हक में, बिल्कुल हुआ। काश जान ले वो मजलूम जिन्होंने सब्र किया और जो अपने रब के भरोसे पर काम कर रहे हैं कि क्या अच्छा इंजाम इनका मुंतजर है। 4 दिन की मुश्किल बाद में इंशाल्लाह सब ठीक होगा। ए नबी, हमने तुमसे पहले भी जब कभी रसूल भेजे, आदमी ही भेजे हैं, उनकी तरफ हम अपने पैगामात वही किया करते थे। अहले जिक्र से पूछ लो अगर तुम लोग खुद नहीं जानते। नबियों पर एक ये बहुत इल्ज़ाम था कि ये इंसान क्यों है, खाते हैं, पीते हैं, बाजारों में जाते हैं, बीवी बच्चों को पालते पोसते हैं। क्या पता चला कि लोग हमेशा ये चाहते हैं के दीन को एक कोने में बंद कर दिया जाए और दुनिया लोगों के लिए खोल दी जाए। तो फरमाया, ऐसे लोगों को तुम पूछ लो जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। पिछले रसूलों को भी हमने रोशन निशानी और किताबें देकर भेजा था और अब यह जिक्र तुम पर नाजिल किया है ताकि तुम लोगों के सामने इस तालीम की तशरीह व तौज़ीह करते जाओ जो इनके लिए उतारी गई है और ताकि लोग खुद भी गौर व फिक्र करें। अब आपके मेरे सामने है कुरान, जितना मर्जी इसमें गौर व फिक्र करें और आप देखेंगे जितना गौर व फिक्र करेंगे उतना अपने दुनिया के गमों से, तकलीफ़ों से इंशाल्लाह बेनियाज होते जाएंगे। फिर क्या ये लोग जो दावत पैगंबर की मुखालफत में बदतर से बदतर चाले चल रहे हैं इस बात से बिल्कुल ही बेखौफ हो गए कि अल्लाह इनको ज़मीन में धंसा दे या ऐसे गोशे से इन पर अजाब ले आए जिधर से इनके आने का इनको वहम व गुमान तक ना हो। अल्लाह की पकड़ बड़ी अचानक है, या अचानक चलते फिरते इनको पकड़ ले या ऐसी हालत में इनको पकड़ ले जबकि इन्हें खुद आने वाली मुसीबत का खटका लगा हो और वो इससे बचने की फिक्र में चुकन्ने हो। वो जो कुछ भी करना चाहे ये लोग इनको आजिज करने की ताकत नहीं रखते। हकीकत ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही नरम खू और रहीम है। ये सिफात क्यों आई कि लोगों के गुनाहों के बावजूद अल्लाह उनको नहीं पकड़ता, ये उसका रहम है। और क्या ये लोग अल्लाह की पैदा की हुई किसी चीज़ को नहीं देखते कि इसका साया किस तरह अल्लाह के हजूर सजदा करते हुए दाएं और बाएं गिरता है, सब के सब इस तरह इजहारे इश्क करते हैं, ज़मीन आसमान में जिस कदर मखलूकात हैं और जितने मलाइका सब अल्लाह के आगे सर बसजूद हैं। अल्लाह हमें भी झुकने वाला बना दे। वो हर किस सरकशी नहीं करते, अल्लाह हमारी सरकशियां भी दूर कर दे। अपने रब से जो इनके ऊपर है डरते हैं, अल्लाह हमें अपना डर भी दे दे। और जो कुछ हुक्म दिया जाता है इसी के मुताबिक काम करते हैं, अल्लाह हमें भी तेरे हुक्मों के मुताबिक काम करने वाला बना दे। अल्लाह का फरमान है कि दो खुदा ना बनाओ, खुदा तो बस एक ही है, बस मुझी से डरो। इसी का है वो सब कुछ जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है और खालिसन इसी का दीन सारी कायनात में चल रहा है। फिर क्या अल्लाह को छोड़कर तुम किसी और से तकवा करोगे? देखिए, इस दुनिया में शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं है, ना छोटे की ना बड़े की। आप सूरत मरियम में पढ़ेंगे, बेटे बनाने पर अल्लाह गुस्सा करते हैं, यहाँ अल्लाह की बेटियाँ बनाने पर गज़बनाक हैं। क्या पता चला कि शिर्क की कोई किस्म भी इस कायनात में गवारा नहीं की जा सकती। अब देखिए, तीसरा मुकाम है इस बारे के अंदर नेमतों का जिक्र और खास तौर पे जो तुमको मिली, वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिन अल्लाह, तुमको जो नेमत भी हासिल हुई है अल्लाह की तरफ से हुई है। यहाँ अपने किबलों को सीधा करें, कोई कुछ देता लेता है पीछे अल्लाह का हाथ महसूस किया करें। ये अल्लाह है जो शोहर के दिल में डालता है और वह आपके लिए कुछ लेकर आते हैं। ये अल्लाह है जो आपके बच्चों के दिलों में डालता है और आपके बच्चे आपको कुछ देते हैं। पीछे अल्लाह का हाथ कभी ना भूलें। फिर जब कोई सख्त वक्त तुम पर आता है तो तुम लोग खुद अपनी फरियादें लेकर इसी की तरफ दौड़ते हो, मगर जब अल्लाह इस वक्त को टाल देता है तो यकायक तुम में से एक गिरोह अपने रब के साथ दूसरों को इस मेहरबानी के शुक्रिया में शरीक करने लगता है ताकि अल्लाह के एहसान की ना शुक्री करे। अच्छा, मजे कर लो, अन करीब तुम्हें मालूम हो जाएगा। कितने ही लोग हैं जो इस रवैये का शिकार है। ये लोग जिनकी हकीकत से वाकिफ नहीं, इनके हिस्से हमारे दिए हुए रिस्क में से मुकर्रर करते हैं। खुदा की कसम, जरूर तुमसे पूछा जाएगा कि ये झूठ तुमने कैसे घड़े थे। इन आयतों को पढ़ें और जरा अपने मुल्कों में फैला हुआ शिर्क और शिर्क के अड्डे जहन में लाइए। कैसे निजात होगी उन लोगों की जो इतने सरीहन शिर्क में मुबतला है। अल्लाह ताला हमारी और उनकी हिदायत का सबब बना दे। یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں۔ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، بس وہ خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کسی کو کیا منہ دکھائے، سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے۔ دیکھو کیسے برے حکم ہے جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔ بری صفات کے لائق کیے جانے کے لوگ تو وہ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے، رہا اللہ، تو اس سے برتر صفات ہیں، وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ، اگر کہیں لوگوں کو اللہ ان کی زیادتی پر فوراً پکڑے۔ اس آیت کو پڑھتے ہوئے ڈرے، کیونکہ اللہ جب پکڑنے پہ آئے تو اس طرح بھی پکڑ سکتا ہے، تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑے، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے ایک گھڑی بھر کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ آج یہ لوگ جو چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں وہ خود اپنے لیے ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں۔ کیا ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا، یہ تھی ان کی بات، کہتے تھے دنیا میں بھی بہت ملا نا، وہاں بھی ہمیں بہت ملے گا، ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو آگ سے محفوظ کر دے۔ خدا کی قسم ہے نبی، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے، اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی۔ یہ جرم تھا ہر قوم کا، وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن کر رہے۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔ چند سیکنڈ غور کریں، کیا آپ کے لیے میرے لیے یہ کتاب رہنمائی ہے؟ رحمت محسوس ہو رہی ہے دل پہ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رحمت سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے۔ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے، اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ اب تھوڑا سا توجہ کو مرکوز کرتے ہیں، دودھ کون نہیں پیتا، کس کے گھر میں دودھ نہیں آتا، ایک دن بھی گزارا نہیں ہوتا، کہاں سے آتا ہے؟ فرما ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جب دوسرے ڈرنکس منہ کو لگ جائیں تو بچوں نے دودھ پینا چھوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ دودھ کی جو بات ہے کتنی ناقابل یقین بات ہے۔ بھینس کے پیٹ میں ہوتا ہے خون، پیشاب، کبھی دودھ آئے اور دونوں میں سے کسی ایک چیز کی کوئی آمیزش اس میں نظر آئی؟ کون کرتا ہے؟ تو وہی میرے آپ کے کام کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کے ساتھ جوڑ دے۔ اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگوروں کی بیلوں میں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشاور بھی بنا لیتے اور پاک رزق بھی، یعنی انگور بنا کے کھاؤ گے تو پاک ہے، اور اسی کو سڑا کے گلا کے شراب بنا لیتے ہو تو ناپاک ہے، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔ اور اب اس پارے کی کوئین، اس پارے کے اندر جس کو میں نے آپ نے رول ماڈل بنانا ہے، اور جس کے بعد واقعی پھر کہنا پڑتا ہے کہ کوئی چیز نکمی نہیں اس قدرت کے کارخانے میں، وہ ہے شہد کی مکھی۔ آئیے پڑھتے ہیں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وحی کر دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں پر چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بناؤ، اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس لو، اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہو۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ شہد۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی، جس کو شاید کبھی آپ نے میں نے اہمیت نہ دی ہو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی مکھی سے اتنا بڑا کام لے لیا کہ انسانیت کی شفا کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں میں شفا ہے، ان میں سے دو چیزیں، ایک شہد اور ایک قرآن۔ شہد کی مکھی کو اللہ نے مقرر کر دیا شہد بنانے پہ، اور آپ کو مجھے انسان کو دعوت دی کہ تم بھی تو ایکٹیو ہو، تم بھی تو انسانیت کو یہ قرآن عطا فرماؤ۔ اگر آپ شہد کی مکھی کی کچھ स्टैटिस्टिक्स जानना चाहें कि जिससे आपको महसूस हो कि वाकई ये मक्खी क्या चीज़ है, आप देखिए कि शहद की मक्खी को अल्लाह ताला ने एक अजीब खूबसूरत जिस्म दिया है, कि किस तरह उसके जिस्म के अंदर मशीनों की मशीनें लगी हुई हैं और किस तरह वो अल्लाह की वही के मुताबिक जो असल पैगाम है ना इधर, वो कह के शहद की मक्खी जो काम करती है वो वही की रोशनी में करती है। हकीकत यह कि अगर आज हम इंसान भी वही की रोशनी में अमल करते, इस कुरान की वही को आम करते, तो इंसानियत के लिए इतने फ़ायदेमंद होते। ये देखिए, ये पिक्चर है आपके सामने, अगर आपको ना भी नज़र आए तो बाद में देख लीजिएगा। इतनी छोटी सी चीज़, और ये पता नहीं उसका कितने गुना बड़ा किया हुआ है। आप देखिए, ये शहद की मक्खी का हलक है, ये सूंड है, ये उसकी रगें हैं, ये गोल सा उसका मैदा है, ये छोटा सा दिमाग है, ये अंदर गिल्टी है, ये शारग है, ये इसके परों के पट्टे हैं, ये सांस का कारखाना है, ये वो गोल सी थैली इसके अंदर शहद जमा होता है, ये उसकी ऊपर की रगें हैं, ये नीचे सांस लेने के पट्टे हैं, ये उस छोटी आंत है, ये नीचे कोने में देखिए डंक है, इसके बिल्कुल साथ एक जहर की थैली होती है, अगर ये मिल जाए तो सब जहरीला, और ये देखिए मैदा, ये असाब, ये सूंड, ये सब कुछ मालिक ने बनाया और किस खूबसूरत तरीके से काम करती है। एक पौंड शहद बनाने के लिए शहद की मक्खी को 20 लाख फूलों का रस चूसना होता है, 30 लाख उड़ाने उड़ती है, 55,000 मील का सफर तय करती है, पोलन खाती है, जाकर दूसरी जगह पे पहुंचाती, फूलों का रस लेती है, उसके अंदर से सिर्फ एक कतरा लेती है, फिर वापस जाती है फिर उस छज्जे में, और वो जो छज्जा बनता है हेक्सागोनल, 6 कोने। आज पैकिंग कंपनियों ने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि जो शहद की मक्खी का छज्जा है, इससे ज़्यादा प्रिजर्वेशन में कोई और शेप कारामदी नहीं है। फिर वो एक एक कतरा उसमें डालती है, एक क्वीन मक्खी होती है, बाकी सब वर्कर हैं, 2 मक्खियाँ, इनका एक पूरा प्रोसेस है काम करने का। एक क्वीन की गाइडलाइन के अंदर सारी हजारों मक्खियाँ काम करती हैं, मेल कुछ नहीं करता, सब मोहनस के सीखे हैं। अगर आप इधर पढ़े, अभी वीडियो में भी आपको दिखेगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने हम औरतों को बताया कि इतनी बारीक मक्खियाँ, सर देखें तो सुई के सिरे के बराबर, वजन भी उसका कुछ ना हो, लेकिन उसको इतनी अकल है, इंसानियत को इतना फायदा दे रही है। फिर कुछ दरबारी मक्खियां होती हैं जो छज्जे के पास बैठ के पर चलाती रहती हैं, मक्खियों और कीड़ों मकोड़ों को दूर करती हैं। कुछ मक्खियां जो हैं वो शहद को जब गरम गरम होता है ना, तो उधर जाके अपने परों की वाइब्रेशन से पंखे चलाती हैं और वो शहद ठंडा होता रहता है। एक तीसरी मक्खी है, वो आती है और हर कोने के ऊपर, कतरे के ऊपर मोम का एक एक कतरा टपकाती जाती है ताकि वो टेट्रा पैक सील पैक हो जाए। इस तरह महफूज शहद पहुंचता है। जिस फूल से एक दफा शहद की मक्खी असर ले जाए, दूसरी मक्खियां उधर नहीं जाती, क्यों? कि वो मक्खी वहां से गुजरते हुए एक छोटा सा एक निशान छोड़ जाती है कि अब इधर ना आना, जाओ इधर काम हो रहा है, तुम कहीं और चले जाओ, ये कैफियत होती है। और फिर उसके बाद देखिए कि अपनी हरकत से ऐसे 8 के दायरे में ये घूमती है, बिस 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 बिस, अगर इधर से इधर घूम रही है ना तो बाकी सारी मक्खियों को, कहते हैं कि एक छज्जे में 30,000 मक्खियां भी होती हैं, मक्खियां उसकी तरतीब से जान लेती हैं कि इधर शहद है, इधर इधर से फूलों का रस ले आए, इधर जाना है, ईस्ट में जा रही हूं, वेस्ट में जा रही हूं, और कभी आज तक कोई मक्खी रास्ता नहीं भूली। ये कौन करता है? अल्लाह ने मुझे आपको भी यही कहा है, तुम भी तो अपने आप को देखो। आप देखिए कि मुझे आपको ये सब क्यों सिखाया जा रहा है कि दुनिया में इंसानों को भी इसी तरह एक्टिव होना है। 2 तरह की मक्खियां हैं, एक है नाहल जिसका यहां जिक्र पड़ रहा है, एक है जुबाब जिसको गंदी मक्खी कहते हैं, सूरत हज के आखिर में हम पढ़ेंगे। शहद की मक्खी शिफा और जुबाब गंदी, दोनों को अलग कीजिए। शहद की मक्खी की सारी कामयाबी क्या है अगर आप इसमें से हाईलाइट करेंगे, फर्स्ट लुकी सुबुला रब्बी का जुलूला, अल्लाह के बताए हुए तरीके पे काम करती है। जुबाब अपनी मर्जी के तरीके पे काम करती है। नहल इंसानियत के लिए शिफा है, जुबाब इंसानियत के लिए अजाब है। शहद की मक्खियां आपस में नहीं लड़ती, 30,000 मक्खियां एक छज्जे के गिर्द घूम रही हैं, आपस में नहीं लड़ती, और गंदी मक्खियों को देखिए लड़ती फिरती रहती हैं, हर वक्त मक्खियां बिस बिस करती होती हैं। आप देखिए हर जानवर लड़ता है, बिल्लियां लड़ती, कुत्ते लड़ते, मुर्गियां लड़ती, मक्खियां नहीं, शहद की मक्खियां नहीं लड़ती क्योंकि मकसद प्यारा है। फिर आप देखिए शहद की मक्खी इज्तमाई माहौल में रहती है, जुबाब इनफरादी जिंदगी में, उसको दिल करता है कि जो फूड का पार्टिकल है वो मुझे ही मिल जाए। फिर इसी तरह देखिए कि शहद की मक्खी फूलों पर बैठती है और गंदी मक्खी कचरे पे और गंदगी पे बैठती है। किसी ने कहा कि तुम्हें पता है मक्खी की 500 आंखें होती हैं, कहा फिर क्या फायदा, फिर भी बैठती तो गंद पे ही है। इसी तरह इंसानों में भी 2 रूप है, مومن جو ہوتا ہے نا وہ شہد کی مکھی ہوتا ہے، ہارڈ ورکنگ، محنتی. میں نے انشاءاللہ بھی کل ہی رات کو نیت کی اور اللہ نے اس کا راستہ بھی کھول دیا. اسی رمضان کے فوراً بعد ہم ایک انشاءاللہ سیمینار کریں گے، بی لائک ا بی، شہد کی مکھی جیسے بنو. اب یہاں اگر میں سناؤں گی تو بات بہت لمبی ہوگی، لیکن میرے آپ کے لیے اس میں بہت سوچ کے نکتے ہیں. کیا ہم بھی اللہ کے راستوں میں اسی طرح نکلتے ہیں؟ کیا ہم بھی انسانیت کو فائدہ دیتے ہیں؟ کیا ہمیں بھی اتنی عقل اور سمجھ ہے؟ کیا واقعی ہم ہر وقت یہی روتے ہیں مرد ساتھ نہیں دیتے، مرد ہیں وہ؟ دیکھیے پورا کام شہد کی مکھی فیمیل کرتی ہے. قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو شہد کی مکھی کے لیے جو سیگے استعمال ہوئے ہیں ہمارے اس سبق میں، جو بھی ہم نے پڑھا، وہ سارے فیمیل سیگے ہیں. فصل کی وتخیزی، اور یہ وہ چیز ہے جس کو آپ پر میں اگر جان جائیں تو کبھی اپنے عورت ہونے پہ برا نہ مانیں. اسی بارے میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ بیٹی کی پیدائش پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ عربی کے لفظ میں ایک مذکر ہوتا ہے اور ایک مؤنث ہوتا ہے. مذکر آپ کو اردو میں بھی پتہ ہے، انگلش میں بھی پتہ ہے، میل اینڈ فیمیل. اب آپ دیکھیں گے کہ ان آیتوں کی اگر آپ ٹیکسٹ پہ نظر ڈالیں تو آپ کو جو بھی سیگے دکھ رہے ہیں نا، یہ مؤنث کے سیگے ہیں، جس کو آج سائنس نے ثابت کیا ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ کام فیمیل مکھی کرتی ہے. جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، کسی کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ مکھیوں میں مذکر اور مؤنث بھی ہوتے ہیں. تو یہ قرآن کی ایک بہت بڑی سچائی کی دلیل بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں ایک دوسری بھی چیز ہے کہ عورت اور مرد کی بات نہیں ہے، اصل بات یہ پروڈکٹیوٹی. عورت اگر پروڈکٹیو ہو جائے نا تو سوسائٹی سنور جاتی ہیں. آپ یہ اس مکھی کو دیکھیے، پھول سے کتنے سلیقے کے ساتھ یہ لے رہی ہے ان چیزوں کا رس، اور ایک ایک چیز کو وہ اپنی زندگی میں کیسے لاتی ہے کہ اس کی اصل لیتی ہے، پھول کا بہترین حصہ لے کر اس کو اپنے اندر جذب کرتی ہے، اپنے پیٹ میں لے جاتی ہے، پھر وہاں سے سفر کرتی ہے اور وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہنچانا ہوتا ہے، اور اس طرح کام کرتی ہے. ایسے کام کر، نان سٹاپ کام کرتی ہے. ایک مکھی ساری زندگی کام کر کے آپ کو پتا کتنا شہد بناتی ہے؟ آدھی چمچی، جو ہمارے سنک میں ہی گر جاتا ہے. آج کے بعد کوئی چیز ضائع کریں تو پہلے یہ سوچیں. یہ دیکھیے کتنی محنت کرتی ہوئی جتی ہوئی ہے. اب آپ ذرا ان کے منظر دیکھیے، اتنی قریب بیٹھی ہیں، لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ اگر وہ آپ کو پھول دکھ رہے ہیں نا، تو اس کے اندر یلو پارٹ چن رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر بعد یہ سارا سرخ ہو جائے گا کیونکہ اس کے پولن سارے اس نے کھا لیے. کوئی دوسری مکھی اس کے قریب نہیں آئے گی. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اس مکھی نے یہ کام کر لیا. آج ہم کیے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں، ایک ہی کام ساری کر رہے ہیں، کیونکہ ایک کر رہا ہے تو ہم نے بھی وہی کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ہمارے سامنے رکھا. یہ دیکھیے کچھ سفید پھولوں کو لے رہی ہے. آپ نے دیکھا شہد کا رنگ فرق ہوتا ہے، کیونکہ کچھ وائٹ کو چنتی ہیں، کوئی پنک کو چنتی ہیں. اتخذ کا لفظ کیا ہے؟ پکڑو، مطلب جو تم اپنا گھر بناؤ، یہ مذکر ہے. اتخذی آ گیا، فیمیل ہے، قرآن میں یہ دلیل ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ مکھی اللہ کی ہے. کل کہیں گے عربی میں مرد کو کھاؤ، اور کل ہی کہیں گے اے عورت تم کھاؤ. یعنی یہ صرف لفظ آپ کو اس لیے دکھائے جا رہے ہیں، یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سارا کام فیمیل مکھی کرتی ہے. کل ہی کا لفظ آیا آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، آپ بعد میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس لک فالو کرو، چلو، اور اس لک ہی تم عورت چلو. اللہ نے قرآن میں پیش کر دیا کہ یہ مکھی ایک فیمیل ہے جو یہ کام کر رہی ہے. یہ باتیں کیا غیر مسلموں کا دل نہیں ہلاتی کہ قرآن سچی کتاب ہے؟ پر ہمیں خود نہیں پتا، ہم دوسروں کو کیسے بتائیں. ہو کا لفظ ہوتا ہے اس ایک مرد کے لیے، اور ہا میں بدل دیں گے تو یہ لفظ ہو جائے گا کس میں؟ مؤنث کے لیے. یہاں کیا آ رہا ہے؟ ہا کا لفظ آ رہا ہے. بار بار اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو استعمال کیا ہے کہ ایک انسان اس پہ غور و فکر کرے اور دیکھے کہ یہ باتیں کس نے ان کائنات کی چیزوں کو بتائی. اب ذرا ان کی خوبصورتی بھی دیکھیے آپ. یہ دیکھیے یہ چھوٹی سی مکھی کیا کر رہی ہے. کیا میں اس سے مضبوط نہیں ہوں؟ میں بڑی نہیں ہوں؟ اور یہ دیکھیے پھولوں کی کیاری، اس میں سے اس نے یہ ہنی لے کر آنا ہے. میں نے آپ نے ابھی تک انسانیت کو کیا دیا ہے؟ آج گھر جاتے ہوئے سوچئے گا، کیا میں انسانیت کو شہد تو نہیں دے سکی، لیکن شہد سے بھی پیاری چیز قرآن دے سکی ہوں؟ इसी तरह एक दीन वाला भी जगह जगह का घाट घाट का पानी पीता है, वो भी फूलों का असर लेता है, कई उस्तादों के हाथ लेकर, कई लोगों से इल्म दीन लेकर, कितने तजुर्बों से गुजर कर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह फिर वो एक कुरान का इल्म देने के काबिल होता है। कितनी बड़ी ये एक नेमत है अल्लाह की कि कई सालों की मेहनतों का नतीजा आपको 1 घंटे 2 घंटे में मिल जाए। तो ये दुआ कीजिए कि अल्लाह में इल्म दोस्त बना दे। ये वाकई अल्लाह का कलाम है, दुआ कीजिए कि इस कलाम के लिए हम संजीदा हो जाएं, अल्लाह में एक्टिव कर दे, अल्लाह ताला हमारी सुस्तियां दूर कर दे। मैंने तो शहद की मक्खी से बहुत सीखा है, आराम नहीं, काम काम काम, काम में ही आराम है। वो सुकून खाने से नहीं मिलेगा जो काम से मिलेगा, सोकर वो ताकत नहीं मिलती जो काम से मिलती है। अल्लाह ताला आपको मुझे एक्टिव कर दे। आज के दिन के लिए इतना ही काफ़ी था। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व तूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समील अलीम व तूब अलैना इन्नक अंत तवाब रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरी खल्किही व असहाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।